इमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्ति अवपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोग ऐश्वर्या गतिं प्रति। तो इसका अनुवाद साथ में पढ़ेंगे। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे जन्म शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो बहुत ही उत्तम श्लोक, भगवान हर एक श्लोक को इतने उत्तम रूप से वर्णन किए, इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, क्योंकि वो जब बोलते हैं श्लोक तो हर एक श्लोक अपने आप में उत्तम होता है। तो हमने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक 39 श्लोक में चर्चा की थी। क्या की थी बता सकते हैं कोई? 2.39 भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में हमने चर्चा की है अपने कुछ हफ्तों पहले। क्या चर्चा की है? हमने चर्चा की थी बुद्धि योग के बारे में कि बुद्धि योग क्या है। क्या चर्चा की थी? बुद्धि योग क्या है, बोलिए। बुद्धि योग क्या है हमने चर्चा की है दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में हमने चर्चा करी थी क्या बुद्धि योग के क्या विशेषताएं हैं, उसके गुण क्या हैं, कैसे माना जाएगा कि ये बुद्धि योग है। तो हमने बताया था बुद्धि के द्वारा भगवान से जुड़ने के तरीके को बुद्धि योग कहते हैं और बुद्धि योग के विशेष गुणों की चर्चा की थी। दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में हमने चर्चा करी थी दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं व्यवसाय आत्मिका और एक होते हैं अव्यवसाय आत्मिका। तो दो व्यवसाय आत्मिका का मतलब हमने बताया था कि दृढ़ संकल्प कोई व्यक्ति हो, कैसा हो? दृढ़ संकल्प, कृष्ण भावना भवित के लिए दृढ़ हो, उसकी बुद्धि कई शाखाओं में विभक्त ना हो, एक तरफ लगा रहे दृढ़ संकल्प होकर, बस मुझे कृष्ण भजन करना है, घर में परिवार में जो भी काम करे दृढ़ होकर के करे, वो व्यक्ति व्यवसायी बुद्धि का कहलाता है। और अव्यवसायी वो होता है जिसकी बुद्धि कई भागों में बटी रहती है ना। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कार्य करने से व्यक्ति अव्यवसायी बन जाता है, ऐसे कौन से कार्य हैं कहा जाएगा। अब हम अपने बारे में सोचें, क्या हम व्यवसायी आत्मिक बुद्धि के हैं या हम अव्यवसायी, हम दृढ़ हैं या नहीं हैं, इसका टेस्ट क्या है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन भगवद गीता के इस दूसरे और दूसरे अध्याय के 42वें और 43वें श्लोक में हम आपको थर्मामीटर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बुखार चेक करो कि आपकी बुद्धि भाग में बटी है या नहीं बटी है। तो अब हम उस थर्मामीटर से चेक करेंगे सिम्टोमेटिक डिसीज, सिम्टम ऑफ डिसीज क्या है, क्या सही मायने में हम दृढ़ संकल्प नहीं है या है, इसको भगवान बता रहे हैं। तो पांच प्रकार के लक्षण बताए हैं कि कोई व्यक्ति अगर अव्यवसाय आत्मिक बुद्धि का हो, जिसकी बुद्धि कई भागों में बटी हुई है, कई भागों में, घर की भी सोचता है, राष्ट्र की भी सोचता है, देवी देवताओं की भी सोचता है, सोशल नेटवर्किंग की भी सोचता है और साथ में भगवान का भजन भी करता है, वो दृढ़ संकल्प नहीं है। दृढ़ वो है जो कि शिव जी के जैसा है, शिव जी रात दिन भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, आप उनको कभी नहीं देखेंगे किसी और काम में बिजी हैं। यहां तक कि शिव जी ने एक बार, पार्वती ने शिव जी से बोला कि हे शिव, आप क्या ऐसे ही पूरा जीवन मुझसे विवाह करके गरीबी में कटाएंगे? पहाड़ पर बैठकर तपस्या करते हैं, मृग छाला पहनते हैं और हिमालय पर आप बैठे हुए हैं, हमारे पास एक छत भी नहीं है और आप इतने बड़े देवों के देव महादेव हैं, तो क्या आप पर भगवान की इतनी कृपा भी नहीं है हे महादेव कि आप जो है एक घर बना सके? महादेव बोले, नहीं मैं बना तो सकता हूँ, पर घर में क्या होता है, आसक्ति हो जाती है और फिर हम यही सोचते रहते हैं इस घर का रग रोगन कराना है, रिनोवेशन कराना है, जीर्ण उद्धार कराना है, हम यही लगे रहते हैं, मेरा घर मेरा घर मैं मेरा। पहले ही भगवान ने बहुत सारी आसक्ति के साथ में हमें शरीर प्रदान किया और ऊपर से और हम बनाते रहते हैं, और कई लोग तो चार चार घर बनाते हैं, उनकी आसक्ति तो और भी ज्यादा है, वो आसक्ति में भी विभाजित है वो लोग, कई प्रकार की आसक्तियों में। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं विश्वकर्मा को बुलाता हूँ, पार्वती तुम्हारी इच्छा है तो एक घर बनाता हूँ। तो उन्होंने एक घर बनाया, स्वर्ण का घर, सोने का घर, और सोने का घर बुलाकर बना करके, अब सोने का घर बना तो लिया, अब घर के अंदर क्या होता है, गृह प्रवेश होता है कि नहीं, आप लोग कराया कि नहीं गृह प्रवेश, ऐसे ही घुस गए घर में गृह प्रवेश। तो गृह प्रवेश करने के लिए किसको बुलाया, पंडित जी को। तो पंडित जी कौन थे, रावण। रावण जो थे सबसे उत्तम श्लोक बोलने वाले व्यक्ति थे, एकदम प्रकांड विद्वान, लेकिन वो राक्षस क्यों है, क्योंकि रावण के जो पिता है उनका नाम है विशर्वा ऋषि और उनकी माँ का नाम है क्या है, केकसी। तो केकसी माता जो है वो राक्षस कुल की है, परंतु जो रावण के पिता हैं वो है विशर्वा ऋषि। तो देखा जाए तो उनको अपने पिता से ऋषि गुण प्राप्त हुए, ब्राह्मण के गुण प्राप्त हुए हैं, और माता से आसुरी गुण प्राप्त हुए हैं। पर ज्यादातर देखा गया है कि जो पुत्र पुत्री होते हैं बालक, उनमें माता के गुण ज्यादा आते हैं पिता से, इसलिए एक व्यक्ति को ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो गुणवान हो, जिसके अंदर संस्कार हो। जैसा आजकल का मॉडर्न जमाना है, असंस्कारी स्त्री पुरुष संबंध करते हैं, उससे क्या होता है, भगवद गीता के प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा था, वर्ण शंकर उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए पता ही नहीं होता कि हम कौन से गोत्र के हैं, कई लोगों से पूछो आपका गोत्र क्या है तो पता नहीं होता। देखा जाए तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण है। क्यों है ब्राह्मण, क्योंकि कोई ना कोई गोत्र, सात ही ऋषि है, शांडल्य ऋषि, भारद्वाज ऋषि, अत्रि ऋषि है ना, और कौन से हैं, कौशिक ऋषि, इन्हीं ऋषियों की संतान है सारे के सारे जितने भी ब्रह्मांड में दिखाई दे रहे हैं। और फिर कोई व्यक्ति बोल देता है कि नहीं नहीं हमें तो पता ही नहीं हमारा गोत्र क्या है, और कई लोग तो कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो बंदर थे, और उसकी थ्योरी भी मानी जाती है ना, थ्योरी मानते कि नहीं मानते, पूर्वज बंदर थे हमारी, लेकिन ऐसी थ्योरी जो है वो बिना सिर पैर की है। अगर बंदर हमारे पूर्वज थे, बंदर से इंसान बना, मिस्टर डार्विन कहते हैं कि बंदर से इंसान बना और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुआ, इवोल्यूशन हुआ, बंदर था फिर एक आदि मानव बना और फिर उसके बाद में पूर्ण रूप से एक मनुष्य बना। उस व्यक्ति से पूछना चाहिए, उस साइंटिस्ट से पूछना चाहिए, उस डार्विन से पूछना चाहिए। और श्रीला प्रभुपाद जी ने खाली पूछा नहीं, इसको प्रूव करके दिखाया और लोगों ने इसको समझा, इसीलिए आज अमेरिका में भी हजारों लाखों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इस बात को फॉलो करते हैं कि देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ बॉडी, बंदर से कभी मनुष्य नहीं बन सकता, करोड़ों साल तक भी बंदर को रखे पकड़ के पिंजरे में वो बंदर ही रहने वाला है, बंदर से कैसे कोई व्यक्ति इवोल्यूट होगा। और इवोल्यूट हुआ भी, आप उस थ्योरी को माने पढ़े तो आप बताइए कि बंदर था, फिर एक आदि मानव था, फिर इंसान था, अभी बंदर भी है और मानव भी है, बीच के लोग कहां चले गए, क्या अब इवोल्यूशन होना बंद हो गया है? तो ये सारी चीजें क्या होता है, थ्योरी होती है मेंटल स्पेकुलेशन, मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक थ्योरी दे दी रिसर्च करके, रिसर्च पेपर, और कई लोगों को अच्छी लगी, उसे अप्रूवल भी ले लिया, उस पर नोबेल पुरस्कार भी ले लिया, परंतु सच्चाई क्या है उसकी, बिग बैंग थ्योरी, बहुत बड़ा धमाका हुआ और उससे सृष्टि की रचना हो गई, क्या ये सच्चाई है? धमाके से कभी कोई रचना हुई है? आज हम एम्स के इस पंडाल में, इस स्थान में करना चाहें बहुत बड़ा धमाका, तो आप लोग क्या करेंगे, रुकेंगे, भाग जाएंगे, रुकिएगा ना, क्योंकि इसके बाद यहां पर एसी वाला रूम बन जाएगा। ये बिना सिर पैर की थ्योरीज होती हैं। और फिर बाद में काफी सारे स्कॉन में ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे हमारे एक साइंटिस्ट है डॉक्टर टीडी सिंह, गूगल पर जाकर के सर्च करिएगा, उन्होंने बहुत बड़ी अमेरिकन यूनिवर्सिटी रिसर्च करी। बाद में जब उन्हें पता चला श्रीमद् भागवत पढ़कर और गीता पढ़कर कि जो ज्ञान मैंने लिया है ये बिना सिर पैर का ज्ञान है, इट्स ऑफ नो यूज एंड नोबडी कैन प्रूव इट। पीपल से कि लोग मर जाते हैं, मर जाने के बाद में उनके शरीर से कुछ चला जाता है, कोई बोलते हैं केमिकल लॉस हो जाता है, इसकी बॉडी में ये केमिकल लॉस हो गया था इसके कारण ये हुआ, ये ऑर्गन डैमेज हो गया था, ब्लड सप्लाई बंद हो गई थी, ये सारे कारण हैं। अगर ब्लड सप्लाई बंद है तो ब्लड दे दो, ब्लड अवेलेबल है बाहर। ऑक्सीजन बंद हो गया, ऑक्सीजन दे दो। वेंटिलेटर पर रखकर भी जीवन नहीं दिया जा सकता, एक बार आत्मा निकल जाने पर वो व्यक्ति मरा हुआ ही माना जाएगा। एंड इट इज बीन प्रूवन बाई अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, इज नॉट कि कोई पंडित जी आए और बोलने लग गए। तो इस्कॉन इज एन इंटरनेशनल सोसाइटी, इसमें सब कुछ अप्रूव किया गया है साइंटिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा, जो बोला गया है इस पर बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि आत्मा आने से ही जीवन आता है, आत्मा के चले जाने पर जीवन चला जाता है, और सबसे मूल चीज है कि हम सब कौन है, आत्मा है, इस चीज को समझना है। तो इस तरह से यहां पर सिम्टम्स की चर्चा हो रही है, 5 सिम्टम बताए हैं जिससे पता चलेगा कि आप सही मायने में क्या है, दृढ़ है कि नहीं है, डिटरमाइंड है कि नहीं कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए, क्या आप दृढ़ हैं, इस बात का निर्णय करेगा ये थर्मामीटर। तो इसमें बता रहे हैं भगवान, सबसे पहली चीज बोलते हैं, पहली लाइन में बोला है 42वें श्लोक में अविपश्चित, इसमें बोला अविपश्चित, इसका मतलब है अल्पज्ञ व्यक्ति, जो व्यक्ति अज्ञानी है ना। और प्रभुपाद जी पहले परपट में लिख रहे हैं साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते, साधारण समान तरह से साधारण लोग बुद्धिमान नहीं होते, साधारणतः कॉमन सेंस इज सच अ कॉमन दैट इट इज रेयरली फाउंड इन द कॉमन पीपल, होते ही नहीं है अवेलेबल। तो सही में देखा जाए तो इंटेलिजेंट है ही नहीं कोई भी, तो वो ही इंटेलिजेंट नहीं है और वो अपने किस में बिजी हैं, इंद्र तृप्ति में बिजी हैं, इतने युक्त हैं इंद्र तृप्ति में, क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम खाने में, टीवी देखने में, पिक्चर देखने में, कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये मनुष्य शरीर जो मिला है, ह्यूमन फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शरीर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। वो काम आप गाय के शरीर में नहीं कर सकते जो मनुष्य के शरीर में कर सकते हैं। गाय के शरीर में जप कर सकते हैं, कुत्ते के शरीर में प्रसाद खा सकते हैं बचा हुआ, वो भी भाग्यशाली कोई हो जो आ जाए इस्कॉन के प्रोग्राम के बाहर, लेकिन क्या वो मंदिर में कथा सुन सकता है? ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है किसी और शरीर में। मान लीजिए कोई व्यक्ति फ्लाइट पायलट है, हवाई जहाज उड़ाता है, और हवाई जहाज उड़ाने पर वो शराब पीकर हवाई जहाज उड़ा रहा है, क्या ये सही है? गलत है। अब अगर वो पाया गया कि वो शराब पीकर हवाई जहाज उड़ा रहा है तो क्या किया जाएगा? टर्मिनेशन, डिमोशन, नौकरी से नहीं निकालेंगे, लेकिन कहेंगे अब आप फ्लाइंग पायलट ना होकर ग्राउंड ड्यूटी पायलट बन जाओ, जमीन पर रहो। अब जमीन पर वो क्या चलाएगा? गाड़ी, कार चलाएगा। अब कार को वो चाहे कि मैं उड़ा सकूं, उड़ा सकेगा? उसकी क्षमता खत्म हो गई। इसी तरह से एक आत्मा को बोला गया, जब मनुष्य शरीर मिला, नॉनवेज मत खाओ, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, परिस्त्री संग मत करो, शास्त्र पढ़ो, हरि नाम जपो, प्रसाद खाओ, ऐसी चीजें बोली। लेकिन मनुष्य शरीर पाकर वो इस पायलट की तरह, ये व्यक्ति अगर नहीं मानेगा तो क्या कर दिया जाएगा? डिमोशन। कौन सी लाइफ में चले जाएंगे? एनिमलिस्टिक लाइफ, पशु जीवन में प्राप्त होगा। अब ये आत्मा कुत्ते के शरीर में चली गई तो क्या ये दोबारा से मनुष्य के काम कर सकती? हवाई जहाज में उड़ सकता है वो पायलट? नहीं, वो गाड़ी तो चलाएगा लेकिन हवा में उड़ नहीं पाएगा। तो यही मनुष्य शरीर का उपयोग हमें सदुपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। तो उनको बोला जाता है अविपश्चित, तो ऐसे लोग जो है अल्प ज्ञानी होते हैं। दूसरा बताया गया वेदवाद रतः, दूसरे श्लोक की लाइन में वेदवाद रतः, इसमें बोला वेदों के अनुयायी। कुछ लोग तो वेद पढ़ते ही नहीं है, कहते हैं वेद वेद में टाइम कहां हमारे पास वेद पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का, गीता पढ़ना, महाभारत, टाइम नहीं है। तो वो तो बेचारे पूर्ण रूप से इंद्र तृप्ति में लगे हैं। लेकिन कुछ आपके जैसे या फिर आपके जानने वालों में से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी अध्यात्म के प्रति रुचि होती है, वो वेद पढ़ते हैं, तो तो वेद पढ़ते हैं और वेद में उनको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगता है वेदों का? कर्मकांड अनुष्ठान। ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो वो फल मिलेगा, और इसीलिए सब लोग पूजा करते हैं, है कि नहीं? 99% लोगों से पूछो मंदिर में आने वाले से, भैया शिवजी पे जल क्यों चढ़ाया? उसे पता ही नहीं है, उसे बस इतना पता है ये करने से अच्छा फल मिलेगा। उस अच्छे फल की महत्वाकांक्षा में सर्दी के टाइम में शिवजी जो है हिमालय पे बैठे हैं, उन पे जल चढ़ा रहा है। दिसंबर के महीने में आपको ठंड लग रही हो, आप नए वस्त्र पहनकर अपने ऑफिस में आओ और आपका गार्ड, आपका सबॉर्डिनेट एक लोटा जल लेकर के आपके ऊपर फेंक दे, तो आप खुश हो गए या दुखी हो गए? उसे पूछो कि कहां ऐसा वर्णन है, रुद्र अभिषेक का वर्णन है, परंतु वो किस मुहूर्त में, किस समय, किस प्रकार से किया जाता है? यही नहीं कि दूध को पानी में बहाना होता है, उस अभिषेक को करने के बाद में उस अभिषेक का बचा हुआ जल भक्तों में वितरित किया जाता है, एक बूंद भी नाली में नहीं बहाया जाता। जिस तरह से इस सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, सनातन धर्म को जिस तरह से लोगों ने उसको नीचे दर्जे का बना दिया, इसलिए लोग उस पर पिक्चरें बनाते हैं, ओ माई गॉड पीके, क्योंकि वो देखते हैं ना साधारणतः सनातन धर्म बेसलेस हो गया है, क्योंकि शास्त्र नहीं है। अन्यथा रुद्र अभिषेक हो, कृष्ण अभिषेक हो, राम अभिषेक हो, एक बूंद जल भी नीचे नहीं नाली में जाता, वो सारे अभिषेक का जल एकत्रित किया जाता है और भक्तों में वितरित होता है। आप कभी हमारे इस्कॉन मंदिर में आइए, कम से कम 12 महोत्सव मनाए जाते हैं, मिनिमम 12, और सभी महोत्सव में अभिषेक होता है, और अभिषेक का जल पिएंगे तो आपको कृपा भी मिलेगी और आपको आनंद भी अनुभव होगा। उसमें कई प्रकार के जूस होते हैं, कई प्रकार के दूध होते हैं, शहद होते हैं, घी होता है, बूरा होता है, चंदन होता है, फ्लेवर्स होते हैं, और उन फ्रूट जूसेस से भगवान को अभिषेक कराया जाता है, उनका स्नान कराया जाता है, और उस अभिषेक के जल को एकत्रित कर चरणामृत रूप में भक्तों के अंदर वितरित किया जाता है। कहां? नाली में बहाया जाता है। लेकिन परंपरागत लोग ना शास्त्र पढ़ते हैं ना मानते हैं, ये ले बेटा दूध का लोटा शिवजी पे चढ़ा दिया, वो नाली में जा रहा है, मक्खियां हैं, और उसी को वो भक्ति कहते हैं, और उस भक्ति को लेकर लोग पिक्चर बनाते हैं और कहते हैं कि ओ माय गॉड इज दिस भक्ति। हाँ, सच में वो भक्ति नहीं है, लेकिन जिस भक्ति की बात इस्कॉन करता है, शास्त्र करते हैं, गीता करती है, भागवत करती है, वो अलग है, उसमें ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। तो इसलिए जो वेदों के अंदर पढ़ने वाले लोग भी हैं, वो पढ़ते हैं अनुष्ठान, वो भक्ति नहीं पढ़ते, अनुष्ठान पढ़ते हैं। जबकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं वेदश्च सर्वम अहम एव वेद्यो, वेदों में जानने योग्य कोई है तो कृष्ण है। वेद पढ़ा और कृष्ण की भक्ति नहीं करी तो वो व्यक्ति वेदना दुखी रहेगा, जीवन भर वेदना में रहेगा, दुखी रहेगा। तो कई लोग धन के लिए कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं भक्ति करते कहते हैं मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में जाके क्या करेंगे? ऐश। यहां एक अप्सरा पत्नी, मानते नहीं उसको लेकिन वो होती है अप्सरा, और ऐसी 7 अप्सराएं तुम्हें मिलेंगी वहां जाके, वाह, इसीलिए स्वर्ग जाना चाहता हूं। और वहां जाकर क्या मिलेगा? ऐसा कुंड मिलेगा, उस कुंड में स्नान करने से इत्र का उसमें वो रहता है, जैसे आपका बाथटब होता है, वो बहुत बड़ा बाथटब है, उसमें स्नान करने को एक एक आत्मा को शरीर मिलेगा, अच्छे आराम और ऐश्वर्य से आपका जीवन। इसलिए क्या करो? भंडारे करो, मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटेंगे बांटेंगे, बांट रहे, नवरात्रे रख रहे, पीछे कारण क्या है? भोग, इंद्र तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन, कहीं पर भी भक्ति नहीं है ये। कितना भी लाल रंग की चुन्नी बांधो, कहे भक्ति नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कामना है, इच्छा है, भोग है, अभिलाषा है, वो भक्ति नहीं है। चाहे वो शिवजी की जाए, कंधे पे लेकर के कांवड़ लेकर जाया जाए और उसको लेकर आते वक्त फिल्मी गानों में नृत्य किया जाए, क्या वो भक्ति है? क्या ऐसा वर्णन है? क्या ऐसे फिल्मी गाने भागवत में वर्णन है, शिवपुराण में वर्णन है? कहीं वर्णन नहीं है। तो लोगों ने उसका उपहास कर लिया, और लोग उस इसी कारण से उन लोगों को देख करके सच्चे पालनकर्ता जो है उनका मजाक उड़ाते हैं। ओहो, अच्छा आप भी वैसे ही हो गए क्या, पागल हो गए आप भी? और देखा जाए तो मेजोरिटी कैसे लोगों की है, जो वैसे कार्य कर रहे हैं, भगवान के लेकर के उपहास कर रहे हैं, भगवान का पंडाल में एक मूर्ति लगाई और अंदर मदिरा पान कर रहे हैं, कह रहे हैं विश्वकर्मा पूजा चल रही है। कौन से शास्त्र में लिखा विश्वकर्मा जो है वो शराब पीते, ये दुर्गा जी मांस खाती है, ऐसा कहां लिखा है? और जाइए कामाख्या देवी में, दुर्गा जी को मांस का भोग लगाया जा रहा है, कहां लिखा है ऐसा? तो ये सारी चीजें लोगों ने किस लिए करी, अपनी भोग अभिलाषा के लिए, देवी देवताओं तक को नहीं छोड़ते हैं। और इसलिए वो वेदवाद रतः, भगवान कह रहे हैं वेदवाद रतः पार्थ, हे पार्थ, ये लोग वेद तो पढ़ते हैं पर वेद के पीछे भोग की अभिलाषा है। फिर तीसरी चीज कही, नान्यत अस्ति, नान्यत अस्ति इति वादिनः, सबके पीछे कारण क्या है, मेरे जीवन में जो ज्ञान है उसके ऊपर पर्दा आ गया है, इसलिए मैं सही मायने में भगवान को ठीक रूप से देख नहीं पा रहा हूं। जैसे शीशे के ऊपर अगर धूल आ जाए तो दिखाई देगा आपका चेहरा, नहीं दिखेगा, तो क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। वही हो गया है, सबके ऊपर क्या है, शीशे के ऊपर धूल है। सबसे पूछा जाए भगवान कहाँ रहते हैं, बोले यहां रहते, सभी जानते सबके हृदय में परमात्मा है, लेकिन दिखता क्यों नहीं है, उसको ढूंढ रहे, कोई हिमालय में ढूंढ रहा है, कोई उसको कहीं पंडालों में ढूंढ रहा है, कहां रहता है भगवान, ये रहा, इसको ढूंढना कितना मुश्किल है, सरल है, एक बार इसके ऊपर जो धूल लगी है उसका क्या करना पड़ेगा, मार्जन, सफाई करनी पड़ेगी। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, क्या करना पड़ेगा इसकी, और चेतना का दर्पण जो है उसका मार्जन करना पड़ेगा, सफाई। और सफाई का तरीका क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर भगवान कहते हैं काम आत्मनः, काम आत्मा, कैसा शब्द है, काम आत्मा, आपने राम आत्मा सुना होगा, है ना, यह है काम आत्मा, राम आत्मा जिसके हृदय में राम रहते हैं, है ना, आत्मा राम बोलते हैं ना, आत्मा राम, जिसकी आत्मा में राम रहते हैं, भगवान रहते हैं। और यह कैसा है, काम आत्मा, जिसकी आत्मा में क्या रहता है, काम, इच्छा रहती है, काम आत्मनः। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिस व्यक्ति ने यह समझ रखा है मेरे जीवन में एक ही मकसद है पैदा होने का, पैसा कमाओ, लोगों से झूठ बोलो और अपने बड़े बड़े घर बनाओ और मजे करो, कोई आपकी मदद नहीं करता, अपनी मदद खुद करनी पड़ती है, झूठ बोलो सबसे, चीटिंग करो, काम आत्मनः, भगवान कह रहे हैं ऐसा कामी व्यक्ति, इच्छुक व्यक्ति सबसे झूठ बोलता है। बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते हैं, माँ बाप सास ससुर से झूठ बोलते हैं, वो अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं, पड़ोसी एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, इसका कारण क्या है, अपनी इच्छाओं की तृप्ति। और इसी के कारण माया में वो क्या करते हैं, लिप्त हो जाते हैं। कहते हैं माया दास सदा उदास, माया दास कैसा होता है, माया का दास, बस टीवी लग जाए घर में, बीवी आ जाए जीवन में, हमारे में आ गई तो अब बच्चे के में आ जाए, बस इसी में लगे हुए हैं, बुढ़ापा आ गया जीवन में, बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बस इसीलिए जीवन जी रहे, मन नहीं करता प्रभु जी जीने का, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे जीवन, मनुष्य शरीर बहुत भाग्यशाली रूप को मिलता है, इसका एक तरीका है जीने का, इसमें भजन करो, निकल गया तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो ही जाएंगी पूरी। जिनके माँ बाप नहीं होती क्या उनकी शादी नहीं होती, होती है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली है इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग, वो है भजन करना, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को अपव्यय मत करिए। काम आत्मना, माया दास सदा उदास, इसीलिए जो माया के दास हैं वो इतने भंडारे पूजा करते हैं, वैष्णो देवी में 16 किलोमीटर चढ़कर जाते हैं, फिर भी उदासी जीवन से जाती क्यों नहीं है, माया दास, वहां गया तो इच्छा के कारण मांगने, माया दास सदा उदास, लेकिन कृष्ण दास करे आनंद एहसास। कृष्ण दास क्या करता है, आनंद का, कृष्ण भजन में अभी भी आनंद है और इसका फल तो आनंद में ही है, इसका एक ही फल है आनंद। लोग कहते हैं अरे हम तो इतने दिन से जप कर रहे हैं, गाड़ी उतनी की उतनी है, पैसे भी नहीं बढ़े, सैलरी भी नहीं बढ़ी, प्रभु जी कोई कृपा नहीं हो रही है। पहले हम जाते थे साईं बाबा मंदिर में तो हमारे घर बेटा हुआ, दुर्गा जी के वहां जाते थे भंडारे में तो हमारा घर आया, लेकिन कृष्ण भजन कर रहे हैं कुछ नहीं आया। अरे आया ना, क्या आया, आनंद आया, आनंद आया, वो जो कहीं नहीं है वो है। और जीवन में सोचिए, अंबानी जिसके पास में 6700 करोड़ का एंटीला घर है, एंटीला टावर सेकंड नंबर का घर है पूरे विश्व में, पहला नंबर का किसका है, क्वीन विक्टोरिया का, क्वीन विक्टोरिया का जो टावर घर जो है वो सबसे नंबर एक पे है 10,000 करोड़ का, दूसरे नंबर पे 6,700 करोड़ का अंबानी का घर बॉम्बे में एंटीला, इतना रुपया होने के बाद में जिसके घर की कीमत 6,700 करोड़ हो, वो इतनी को कैसा होना चाहिए, सुखी होना चाहिए आपको लगता होगा, भाई हमारी तनख्वाह अगर 60,000 50,000 से 70,000 हो जाए तो हमें लगता है हम सुखी हो जाएंगे, या 2,00,000 हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। उसकी 6,700 करोड़ का तो मकान है पर वो लिखता है मैं बहुत दुखी हूं। अरे उस शब्द को पढ़ा कभी आपने ध्यान से? आर्टिकल्स नहीं पढ़ते हैं आप लोग, पढ़िए उसमें से, उसमें उनकी सैलरी मत पढ़िए, पैसा मत पढ़िए, वो शब्द चुनिए कि मैं दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? बोले जियो मोबाइल मैंने लॉन्च किया, 10 करोड़ कस्टमर्स को फ्री में बांटा, लेकिन उसमें से 125 करोड़ लोगों ने ही 99 रुपए देकर रिचार्ज कराया, मेरे तो बाकी 8.5 करोड़ कस्टमर्स तो चले गए, मैं बहुत दुखी हूं, रो रहा है मेरा दिल, जियो नहीं है ये तो मरो हो गया। हाँ तो क्या फायदा हुआ, पैसे से खुशी है? तो आपको किसी देवी देवता की पूजा से हो सकता है पैसा मिल जाए, वैसे तो भगवान है लक्ष्मीपति, वो जब देंगे ना इतना देंगे लक्ष्मी रखने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी नहीं मिली है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। भगवान तभी देते हैं जब आप उसको रखने के लिए लायक बनो, है ना। कृष्ण जो है वो पिता है, किसी बच्चे का गला खराब हो और बच्चा बोले मुझे दे दीजिए आइसक्रीम, तो माँ बाप नहीं दिलाएंगे चाहे बच्चा कितना भी रोए, क्योंकि बच्चे का गला खराब है, इसलिए कृष्ण वही देंगे जो आपके लिए योग्य होगा। लेकिन देवी देवता आपके पिता नहीं है, माता नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो ऐसे दुकानदार की तरह है, दुकानदार के पास जाओ बोलो मुझे 10 रुपए लो आइसक्रीम दे दो, आप चढ़ावा चढ़ाओ आपको फल मिल जाता है, इसलिए आपको लगता है कि देवी देवता जल्दी सुन लेते हैं। परंतु कृष्ण इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि अभी आप योग्य नहीं है, जिस दिन योग्य होंगे तो माँ बाप अगर आइसक्रीम देने आए तो वो क्या 10 रुपए के मोहताज है, वो तो बिना 10 रुपए के ब्रिक आइसक्रीम भर देंगे पूरी घर के अंदर, है ना। लेकिन ऐसे ही है कृष्ण, देते हैं, लेकिन सबसे उत्तम चीज क्या है जो वो देते हैं, वो है आनंद। वो किसी और के भजन में है ना मिलने वाला है, क्योंकि कृष्ण भजन सतोगुण स्तर पे किया जाता है, सतोगुण के स्तर पे। और आखिरी चीज बोली है स्वर्ग परा, भगवान कहते हैं स्वर्ग परा, ये पांचवा लक्षण है ऐसे लोगों का जो स्वर्ग के प्रति आसक्त रहते हैं। स्वर्ग परा एक होता है, भगवान कह रहे मत परा, जो मेरी शरण में आना चाहते हैं, और कुछ है जो स्वर्ग परा, बस हमेशा स्वर्ग ही जाना चाहते हैं। वो जानते नहीं है स्वर्ग के ऊपर कितना बड़ा जीवन है, स्वर्ग के ऊपर 6 लोक और हैं, और उसके ऊपर वैकुंठ लोक है, ऐसा लोक जहां से जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता, जन्म मृत्यु का चक्र कट जाता है, बुखार बीमारी बुढ़ापा नहीं आता, ऐसा एक लोक है जिसका नाम है वैकुंठा, फ्री ऑफ एंजाइटी इज नोन एज वैकुंठा, कुंठा रहित जगत वैकुंठा। तो ऐसे जगत में जाने को भगवान बता रहे हैं मत परा, मेरे शरण में आओ, और हम क्या हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन स्वर्ग परा, स्वर्ग ही जाना चाहते हैं। इसलिए किसी के पिताजी गुजर जाए तो लोग क्या लिखते हैं, स्वर्गवासी, उन्हें पता ही बस ये है स्वर्ग तक गए, कभी कोई नहीं लिखता मेरे पिता वैकुंठवासी हो गए, लेकिन भक्तों के समाज में बोला जाता है वैकुंठवासी हो गए, है ना, स्वर्गवास। और कई लोग तो ऐसे भी हैं, मैंने पूछा आपके पिताजी तो बहुत शराब पीते थे, ऐसे गंदे काम करते थे, आपका सारा पैसा जो था वो उनके चुकाने में ही चला गया, उन्होंने जो उधार लिया था, तो आपको लगता है कि वो स्वर्ग गए होंगे? कहा पिताजी वो कहा प्रभु जी ये तो पता है कि वो गए तो स्वर्ग नहीं होंगे, परंतु ऐसा लिख नहीं सकते ना, नर्कवासी हो गए, तो लिखना तो स्वर्गवासी पड़ता है समाज के हिसाब से। तो ये है सच्चाई। तो 5 प्रकार के लक्षण यहां पर भगवान ने बताए, क्या कहा, पहला भगवान ने कहा अवपिश्चितः, अल्पज्ञ लोग जो है उनकी बुद्धि कई शाखाओं में बढ़ती है, वेदवादरतः, जो वेदों को पढ़ते हैं अनुष्ठानों के लिए उनकी बुद्धि विभक्त होती है, और कहा नान्यत अस्ति इति वादिनः, ऐसे लोग जो कि सिर्फ अपने जीवन में आनंद नहीं चाहते हैं, क्या चाहते हैं, एंजॉयमेंट, शारीरिक सुख चाहते हैं, और 3rd, 4th प्रकार के हैं जिनको लगता है मेरी काम आत्मनः, सिर्फ जीवन का एक ही लक्ष्य है, इच्छा पूरी करो, बड़े आदमी बनो, पैसे कमाओ, मजे करो, मजे करो, मजे करो, मजे करो, एक दूसरे को फोन पे बोलते हैं और मजे कर रहा है, बस एक ही शारीरिक भाव, मजे ही पता है जीवन में मजे कर रहा है बस, जो मजे नहीं कर रहा हो तो मजे नहीं कर रहा, यही जीवन का टारगेट है, मजे कर रहा है मजे नहीं कर रहा है, बस यही थर्मामीटर, इसके आगे का मालूम ही नहीं, रेंज बहुत छोटी है हमारी। और स्वर्ग परा, मर गए तो बस स्वर्ग चले गए, बस इतना ही पता है जीवन, इसलिए है लोग प्रयास करते हैं। तो यहां पर बताया है, आगे भगवान कहते हैं कि जो वेद हैं, जो ऐसे 4 वेद लोग पढ़ते हैं, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद जो पढ़ते हैं वेद वाणी के लक्षण हैं। कहते हैं वेद कैसे हैं, पुष्पिताम, भगवान ने कहा 42वें श्लोक में, पुष्पिताम, पुष्प के समान है वेद। कैसे हैं पुष्प? पुष्प कैसा होता है? ये पुष्प है, सूंघने में आह बहुत अच्छा, पर इसे खा सकते हैं क्या? पेट भरेगा इससे? सब्जी बना सकते हैं इसकी? कड़वा है, रस नहीं है इसके अंदर। लेकिन फल कैसा होता है? मीठा होता है। उसका रस बना सकते हैं? उसकी सब्जी बना सकते हैं? बहुत सारे बनाते हैं, कई फलों की सब्जी बनती है, केले की सब्जी बनती है, पपीते की सब्जी बनती है, बहुत सारी सब्जियां बनती है। तो सब्जी बना सकते हैं फल की, लेकिन फूल की सब्जी? तो देखने में ये भी सुंदर है, वो भी सुंदर है, परंतु एक की सब्जी बन सकती है, एक को खाया जा सकता है, एक रस से पूर्ण है, एक रस से अपूर्ण है। तो वेद कैसे हैं? पुष्पिताम, पुष्प के समान है, इनके अंदर रस नहीं है। लेकिन जो भागवत है, भगवद गीता है, ये क्या है? फल है। इसीलिए कहते हैं निगम कल्प तरो गलितम फलम, गलितम फलम। सारे के सारे शास्त्रों का गला हुआ पका हुआ फल है कौन सा? श्रीमद् भागवत, भगवत गीता और भागवतम, ये पके हुए फल है। तो पका हुआ फल, एक तो फल होता है और एक पका हुआ फल, रस से पूर्ण है श्रीमद् भागवत पुराण। अभी लोग उसमें लेके आते हैं जी वेद में लिखा है ऐसा, आप कहते हो ऐसा। अरे वेद तो पुष्पिताम, पुष्प है, देखने में सुंदर, उसमें रस नहीं है। फल में आइए, फल, फल क्या है? भागवतम पुराण, वो है भगवत गीता, ये फल है, रस से पूर्ण। जब पढ़ेंगे तब भी आनंद, जब स्मरण करेंगे तब भी आनंद, जब अपनाएंगे तो अपूर्ण आनंद, और शरीर छोड़कर जाएंगे तो संपूर्ण आनंद, आनंद ही आनंद। कभी ऐसा नहीं होगा आनंद का जो अभाव हो हमारे जीवन में। फिर आगे कहते हैं भगवान, जन्म कर्म फल प्रदाम। तो जो लोग हैं वो स्वर्ग इसलिए जाना चाहते हैं, वेद इसलिए पढ़ते हैं ताकि क्या हो? जन्म कर्म फल प्रदाम, मेरे जन्म और कर्मों में क्या हो? फल प्राप्त हो, क्या स्वर्ग प्राप्त हो जाए। लेकिन एक चीज नहीं जानते हैं कि स्वर्ग जाकर के भी वापिस आना पड़ता। आप अमेरिका चले गए 10 लाख रुपए लेकर, जिस दिन 10 लाख का, एक तो वहां पर खर्चा ज्यादा, 10 लाख को जब रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, डॉक्टर दीक्षित अभी लंदन गए थे, है ना, हम लंदन होके पेरिस घूम के आए, कितने रुपए लेके गए थे प्रभु जी? तकरीबन 3 लाख रुपए। कितने दिन में खर्च हुए? 25। उसके बाद क्या करा आपने? इंडिया वापस आ गए। 25 दिन में 3 लाख रुपया खर्च किया उन्होंने, उसको यूरोस में चेंज कराया, है ना, यूरोपियन डॉलर्स में चेंज कराया, और फिर उसके बाद वहां पे खर्च किया वापस, 25 दिन में खर्च हो वापस। स्वर्ग भी वैसा ही है, पूरा जीवन पुण्य करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ये देवी की पूजा, वो देवता की पूजा, ये फल, सोमवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, लक्ष्मी जी का व्रत, कर लो जितने पुण्य इकट्ठे, ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? स्वर्ग। वहां पे पुण्य छिन्न पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, वापिस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, क्योंकि कर्म भूमि तो ये है, कर्म तो यहाँ इस पृथ्वी लोक में करना पड़ता है। इसलिए वो कर्म करो जो कर्म बंधन में ना बांधे, और वो कौन सा कर्म है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आगे कह रहे हैं 43वें श्लोक में, क्रिया विशेष बहुलाम। भगवान क्या कहते हैं? क्रिया विशेष बहुलाम। तो जैसे क्रिया, विशेष क्रिया होनी चाहिए इस कलयुग के लिए, क्या विशेष क्रिया है? बहुत सारी दवाइयां होती हैं, यहां पर आप में से कई सारे डॉक्टर्स हैं, कई डॉक्टर्स नॉलेज रखते होंगे। अगर बुखार हो किसी व्यक्ति को, और अगर उसे एनाल्जेसिक एनएसएआई ड्रग दे दी जाए, तो क्या बुखार नहीं उतरेगा उसका? अगर पेन किलर दिया जाए जिसको बुखार हो, लेकिन कुछ अंश तो उतर जाता है, दर्द तो कम होता है, उसको बुखार का एहसास कम होता है, चाहे टेम्परेचर हो वह 101, लेकिन वो व्यक्ति काम पर चला जाएगा पेन किलर लेकर के चला जाएगा। लेकिन सही मायने में उसको दवाई देनी पड़ेगी तो कौन सी? पैरासिटामोल, क्रोसिन, पैरासिटामोल, उसका वो तभी बुखार सही मायने में उतरेगा, है ना। तो इसका मतलब, इस क्रिया विशेष बहुलाम का मतलब है कि ये पर्टिकुलर जो कलयुग है, इस कलयुग के लिए विशेष दवाई है जी। हम तो हनुमान जी का भजन करते हैं जी, आपके प्रभु जी आते हैं, सत्संग बढ़िया होता है, प्रसाद मिलता है, हम आ जाते हैं। ऐसा थोड़ी इतने साल हमने दुर्गा जी की भक्ति करी, छोड़ दें, शिव जी की करी, छोड़, मत छोड़िए, जाइए स्वर्ग तक, फिर वापिस आइए, पुनः आगमन करिए, आनंद का अनुभव मत करिए, आपके ऊपर है, चॉइस इज योर्स, आपके पास चुनाव है, है ना। मालगाड़ी से जाना है बॉम्बे, एरोप्लेन से जाना है बॉम्बे, या फिर एक्सप्रेस ट्रेन से जाना है बॉम्बे, चॉइस इज योर्स, आपके पास चुनाव है। भगवान कह रहे हैं क्रिया विशेष बहुलाम, इस संसार के लिए, इस क्रिया के लिए, संसार कलयुग के लिए बताया गया हरि नाम यज्ञ, एक ही यज्ञ। बड़े बड़े कुंड बनाकर लोग जो है यज्ञ कर रहे हैं, किसी को बोलो आज हमारी हरि नाम कीर्तन है, वहां नहीं आएंगे। आज ना हमारे हमारे चाचा का गृह प्रवेश था, उन्होंने यज्ञ रखा है घर में। यज्ञ में क्या करते हैं, कुंड रखते हैं। पहला सबसे पहली गलती करते हैं, लोहे के कुंड में यज्ञ करते हैं। किसी भी वेद में नहीं लिखा कि लोहे के यज्ञ कुंड में करना चाहिए, उसके लिए मिट्टी का यज्ञ कुंड बनाना चाहिए, तभी कुंड के अंदर हवन हो सकता है, ना हो नहीं सकता। आप पवित्र है, आयरन में थोड़ी करते हैं, एल्यूमिनियम में, तसले में थोड़ी किया जाता है। काम चलाना है, नाम भी हो, यज्ञ हो गया। एक ने तो मुझे फोन किया, कहते हैं प्रभु जी बस धुआं धुआं कर दो घर में, हम मानेंगे यज्ञ हो गया। अरे धुआं करना कैसे यज्ञ होता है? कोई अनुष्ठान नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, बोले बस धुआं धुआं कर दो। मैंने कहा आप खुद ही कर लेना, लकड़ी जला के घी डाल लेना, धुआं हो जाए। और इतना धुआं कर लेते हैं हमारे स्कॉन में महाराज लोग वर्णन करते हैं कि पंडित जी बोलते हैं जो यज्ञ करने आते हैं, बोलते हैं स्वाहा, और बाकी के लोग भी आहुति डाल रहे होते हैं, और इतना धुआं होता है, आंखें पोछते पोछते बोलते आहा, बोलते स्वाहा, बोलते आहा, ऐसे करते हैं। सोचिए आप जरा, स्वाहा स्वाहा होता है और पीछे मंत्र क्या होता है, आहा आहा। स्वाहा सही मायने में अग्नि जो है, अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा, और स्वाहा बोलने से उनकी पत्नी को वो आहुतियां जाती हैं। परंतु ये यज्ञ है नहीं, कहां लकड़ी पवित्र है क्या? लकड़ी के अंदर जो कीड़े होते हैं, उन जीव जंतुओं को जलाने से आपको पाप लगेगा, मर्डर, किसी जीव जंतु को जलाया आपने, मार, लकड़ी के अंदर कीड़े होते हैं छोटे छोटे, चींटियां होती है, वो जल जाएंगी, उसका अपराधी कौन, यज्ञ करता। घी पवित्र है क्या? भगवान है गोपाल, गायों को पालने वाले, हम भैंस का घी लाते हैं वो भी सस्ता वाला, बोले यज्ञ करना है। भगवान को देने के लिए सस्ता वाला, अपने लिए महंगा वाला। चलो आप सस्ता वाला भी लाए, आपने यज्ञ कुंड में वो डाला, पवित्र घी डाला, उसके बाद में अग्नि प्रवेश कराने के लिए कहते हैं अग्नि मंत्र उच्चारण के साथ प्रवेश करनी चाहिए। मंत्र उच्चारण से अग्नि प्रवेश करा सकता है कोई? है लाइटर से जलाते हैं आजकल पंडित जी लोग, और कई पंडित लोग जेब में हाथ डालते हैं, निकालते हैं माचिस, और साथ में बीड़ी का बंडल भी आ जाता है। बोले पंडित जी बीड़ी पीते हैं? कह रहे हाँ, इससे क्या हो गया? क्योंकि वो कर्म कांड को ही जीवन का हिस्सा मानते हैं कि मंत्र बोलना ही भक्ति है। नहीं, इसके लिए कठिन नियम है। अपने जीवन को पहले मनुष्य स्तर पर तो लाओ, तब तो भक्ति प्रारंभ होगी। तो इस जीवन के लिए बताया क्रिया विशेष बहुलाम है जिह्वा से हरिनाम यज्ञ करना। ये कुंड है, कानों का कुंड, और इसके अंदर जीव हमारी चम्मच है, और उस चम्मच में आहुति क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जिह्वा से बार बार भरो और कान में यज्ञ कुंड में डालो, इसमें जिह्वा से हरे कृष्णा भरो और कान से कुंड में डालो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो सही मायने में वो पूर्ण हरि नाम यज्ञ कर रहा है। इसीलिए कहते हैं बोलो और सुनो, बोलो और सुनो, बोलो और सुनो, है ना। लेकिन हम लगे पड़े वो धुआं, हम आकृष्ट इस चीज से होते हैं, बहुत बड़े बड़े उच्चारण हो। आज घर में पूजा बिठाई है, मैं जाकर हरिनाम कीर्तन कर दूं, बोले प्रभु जी कीर्तन तो हो गया, पूजा, मगर यही तो सबसे बड़ी पूजा है कलयुग की। कहा नहीं, वो होता है ना हवन बनाना, धुआं, अगरबत्ती, कर लो वो विधि करना चाहते हो, परंतु उत्तम तो हरि नाम है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। शिला प्रभुपाद ने विग्रहों की स्थापना करने के लिए, भगवान का आवाहन करने के लिए कहा, जहां हरि नाम कीर्तन होता है भगवान वहां मूर्तियों में भी प्रवेश करते हैं। ये मत सोचिएगा ये मूर्ति है या प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है या भगवान नहीं है, या हर मंगलवार कार्यक्रम हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, भगवान इन्हीं विग्रहों में आते हैं। ये भगवान का घर है, जैसे आप वस्त्र के अंदर प्रवेश करते हैं, भगवान विग्रहों में प्रवेश करते हैं। पत्थर भगवान नहीं है, किसी के मन में आता हो पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, जासे तो चाकी भली की पीस खाए संसार। पत्थर भगवान नहीं है, गलत फहमी है लोगों की जो बोलते हैं पत्थर भगवान है। पत्थर में भगवान रहता है, कपड़ा इंसान नहीं है, कपड़े में इंसान रहता है, तब वो शरीर पे कपड़ा डालकर चलता है, ऑफिस जाता है। कपड़ा भगवान, कपड़ा इंसान नहीं, ऐसे पत्थर भगवान नहीं। पत्थर आने के बाद, उसका श्रृंगार करने के बाद भगवान से रिक्वेस्ट की जाती है, भगवान इसमें प्रवेश करिए, और अगर सेवा नहीं की जाए तो भगवान चले जाते हैं। हर मूर्ति भगवान अगर होती तो जो शोकेस में आर्चीज गैलरी में रखे हुए हैं वो सभी भगवान होते। वो पत्थर है, वो प्लास्टिक है, वो कैरी ऑन है, लेकिन वो भगवान नहीं है, भगवान की रूप है। भगवान का वस्त्र है, भगवान नहीं है, भगवान तो उसमें प्रवेश करेंगे और जब करेंगे तो असंख्य रूप में कृपा करते हैं लोगों के ऊपर। इसीलिए मंदिर जाने की विशेषता यह है कि मंदिर में सदा भगवान रहते हैं, क्योंकि वहां हर समय पूजा अर्चना होती है, कीर्तन होता है। लोग कहते हैं मंदिर की क्या आवश्यकता है, भगवान तो सर्वत्र है, भगवान तो सब जगह है, फिर मंदिर की क्या आवश्यकता है। हरि प्रकट सर्वत्र समाना, भगवान तुलसीदास रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, हरि प्रकट सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। कैसे प्रकट होंगे, प्रेम से। है प्रेम आप में, जो प्रेम आपका मंदिर के अंदर जाकर मूर्ति के सामने जाकर प्रणाम करने में जो प्रेम आता है, वो क्या प्रेम एम्स के गार्ड के सामने जो ईंट लगी हुई है उस पे झुकने से आएगा, नहीं आएगा। उस विशेष प्रेम को जागरूक करने के लिए मंदिर विशेष कार्य काम करते हैं, वरना तो हरि सर्वत्र प्रमाना, समान रूप से हरि सब जगह प्रकट है। आप में श्रद्धा तो हो कि ये भगवान है, फिर भगवान प्रकट हो जाएंगे। श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है और बातें बड़ी बड़ी, ये सभी व्यर्थ के कर्म कांड अनुष्ठानों को करने भोग के अभिलाषा से किया जाता है। और अंतिम में भगवान कह रहे हैं भोग ऐश्वर्यम गतिम प्रति। कोई भी संसार में सुखी नहीं है, है क्या कोई सुखी, किसी से भी पूछो आप खुश हैं, नहीं जी खुश नहीं है। पहली बार में मीटिंग करेंगे, हाउ आर यू, रिप्लाई क्या आता है, आई एम फाइन थैंक यू। ये तो प्रेप का बच्चा भी बोलता है जिसको मालूम नहीं इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले यही सिखाते हैं प्रेप स्कूल में, हाउ आर यू बेटा, कोई पूछे तो बोलना चाहिए आई एम फाइन थैंक यू। और वो रट्टू तोता की तरह पूरा जीवन बोलते हैं, अंदर से जल रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही होती है। कोई पूछे कैसे हो, जवाब आता है बहुत बढ़िया। सच्चाई है कि कोई भी सुखी नहीं है, दुखल है हमें, कोई कैसे सुखी हो सकता है। धूप में किसी से पूछो आपको गर्मी लग रही है तो बोलेगा नहीं लग रही है, लेकिन सच्चाई क्या है, लग रही है। तो इसलिए हम कोई बोले कि ऐसा नहीं है, दुखालय में दुख तो मिलेगा ही। विद्या के घर को विद्यालय कहते हैं, बर्फ के घर को हिमालय कहते हैं, ग्रंथ के घर को ग्रंथालय कहते हैं, भोजन के घर को भोजनालय कहते हैं, ऐसी दुखों के घर को दुखालय कहते हैं। भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा माम उपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। ये घर दुखों से भरा पड़ा है, दुख आलय बनाया किसने, भगवान ने, तो उसकी कौन बता सकता है इसका गुण और इसकी विशेषता क्या है। जैसे एक इंजीनियर जब गाड़ी बनाता कहता है ये 1000 cc की गाड़ी है, ये 5वें गियर में चलती है, रिवर्स गियर में ये प्रॉब्लम करती है, इसके टायर इसकी जो है ग्राउंड टचिंग होती है, इस तरह से उसके विशेष गुण और उसकी गलतियां वही बता सकता है जिसने बनाया। कृष्ण ने स्टैंप किया माम उपेत्य पुनर्जन्म, मुझको प्राप्त करने के बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा, कौन सी जगह, दुख आलयम, इस दुखालयम जगत में, इसका नाम है दुखालय। फिर भी सारे के सारे लोग चल रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे, दिया कर रहे, सोच रहे किसी दिन दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा, कभी नहीं होगा। पर इसका मतलब हम भजन ना करें, छोड़ दे भजन, हम भजन करते हैं आनंद के लिए, आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं करते। शरीर के रोग काटने के लिए करेंगे तो जिस दिन रोग आएगा आपको लगेगा अरे इतनी माला जपी फिर भी रोग, उसी दिन आप भजन छोड़ देंगे, क्योंकि आप समझे ही नहीं। दर्शन कानों से होते हैं आंखों से नहीं, दर्शन का मतलब है फिलॉसफी, दर्शन को फिलॉसफी बोलते हैं कि नहीं, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी। दर्शन कहां से सुनते हैं, कानों से, लेकिन लोग सोचते हैं कहां गए थे, वो दर्शन करने गए थे, दर्शन करने। दर्शन से अगर कोई भक्त बनता तो कितने बुजुर्ग लोग होते हैं चार धाम यात्रा करके आते हैं लेकिन भजन नहीं करते, उनको भगवान पे, वो सोचते हैं चार धाम जाएंगे हमारे पाप कट जाएंगे, ये नहीं सोचते कि मरने से पहले फिर करोगे नहीं क्या, तो चार धाम जाने से पाप नहीं कटते हैं। दर्शन होता है कानों से, जितनी कथा सुनेंगे, जितना प्रेम जागृत करेंगे, जितना भगवान के प्रति शरणागति होगी उतना भगवान का दर्शन होगा। भगवान खुद आ जाएंगे आपके पास दर्शन देने, घर में जरूर नहीं, धाम में जाएं तो दर्शन होंगे, ये भगवान की कृपा है, है ना। भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं, तो इस तरह हमें समझना चाहिए कि हम हर चीज का भोक्ता भगवान को माने। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्व लोका महेश्वरम, इस संसार में भगवान से बढ़कर कुछ है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्व लोका महेश्वरम, ईश्वर तो सब है, ईश्वर शिव, ईश्वर ब्रह्मा भगवान शिव, पर सर्व लोकाम महेश्वरम, महान ईश्वर मैं हूं। मत पर तरम नान्यत किश्चित अस्ति धनंजया, हे धनंजय मुझसे ऊपर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है मुझसे ऊपर। पढ़िए गीता, आपके सामने आपके हाथ में है, और लेके आइए कहां लिखा है कि शिव जी बोलते हैं मत पर तरम नान्य, दुर्गा जी बोलती है, साईं बाबा बोलते हैं। ये हमारी हमारी सोच है, हमने बना दिया है, वरना परंतु भगवान एक है। और इसीलिए आज इस्कॉन केंद्र में हजारों क्रिश्चियन फॉलोअर्स हैं, इस्लामिक फॉलोअर्स हैं, सिख फॉलोअर्स हैं। इसका कारण है पहले ही में भगवान ने लिख दिया, अल्पज्ञ व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, मूढ़ाम ना भी जानाति, मूर्ख मुझे नहीं समझते हैं। जो गीता पढ़ेंगे, इंटेलिजेंट होंगे, इसको पढ़ेंगे, वो समझ पाएंगे कृष्ण से ऊपर और कुछ है ही नहीं, ईश्वरम परम कृष्ण। बड़े बड़े हिंदू हैं, भागवत गीता पढ़ते हैं, कहते हैं विष्णु से कृष्ण आते हैं, कृष्ण से विष्णु थोड़ी आते हैं, जानते नहीं है कृष्ण आदि भगवान है, उनसे विष्णु प्रकट होते हैं। कई प्रकार के गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, करणोदक्षाई विष्णु, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, पढ़िए तो जरा, पढ़ते नहीं है इसी के लिए जानते नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो इस अध्याय में, इस श्लोक में विशेषकर भगवान कह रहे हैं कि पहले जमाने में वैदिक ज्ञान था, तमसो मा ज्योतिर्गमयम कहते, क्या मतलब था उसका? हाँ जी, तमसो मा ज्योतिर्गमयम, कौन बताएंगे? अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ये संसार क्या है, इसके अंदर प्रकाश जलाना हो तो लाइट जलानी पड़ती है। रात को अगर सीएनजी की लाइट, आप सीएनजी कह रहे हैं, कौन सी होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो सीएफएल, सीएफएल की लाइट ना जले तो अंधकार रहेगा। तो इसलिए गाते तमसो मा ज्योतिर्गमय, और इसका असली शास्त्र का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि हमें इस संसार में अंधकार से निकालकर उस लोक में ले जाओ जिस लोक में प्रकाश रहता है। और गीता में भगवान कहते हैं, ना तद बसाय तो सूर्यो ना शशांको ना पावक मत गत्वा ना निर्वतन्ते तद्धामं परमं ममः। उस जगह ना सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्र की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा जगत मुझसे प्रकाशमान होता है, वहां पर लाइट की जरूरत नहीं। आप सोचे वैकुंठ जगत में लाइट की जरूरत पड़ेगी, इतना प्रकाश है भगवान के शरीर से, और वहां आने के बाद तुम्हें दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो तमसो मां ज्योतिर्गमयम का भी अर्थ यही है कि इस संसार रूपी अंधकार से निकालकर उस प्रकाशमय संसार में ले चलो हमको है। और हम फंसे हुए अपनी भोग अभिलाषाओं में, इसीलिए पूजा करते हैं, 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं मंगलवार का, 10 रुपए डालते हैं, हमारा शायद कोई पाप कट जाएगा। ये सब अभिलाषा भक्ति की नहीं है, ये सब कर्म कांड अनुष्ठान है। कृष्ण भक्ति करिए, अपने जीवन को पूर्ण बनाइए। आप देखिए, ये ऐसा प्रोसेस है, इसमें आनंद का अनुभव शुरू और प्रारंभ से ही है। ऐसे तीन विधियां हैं, एक है शुरू में कठिन, एंड में आनंद। कौन सी विधि है? कर्म कांड, तपस्या है ना। बड़े बड़े व्रत रखने पड़ते हैं, ऐसा व्रत रखेंगे पानी नहीं पिएंगे, करवा चौथ का व्रत रख रहे, करवा चौथ का व्रत रख रहे, पहला अनुष्ठान, उसके बाद एंड में फल। एक होते हैं शुरू में मजे, शराब पी, सिगरेट पी, मजे किए, एंड में लिवर फंक्शन खराब हो गया है ना, कैंसर हो गया, कोई ऐसी डिसीज हो गया, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो शुरुआत में अच्छा रास्ता, एंड में तकलीफ। कुछ रास्ते शुरुआत में आनंद, एंड में तकलीफ। लेकिन ये ऐसा रास्ता है भक्ति का, शुरुआत में भी आनंद और एंड में भी आनंद है। इसीलिए इस रास्ते का नाम है आनंद मार्ग, इसको आनंद मार्ग कहते हैं। तो इस आनंद मार्ग को अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, नेताय नेताय गौर हरि प्रेमानंदे। किसी का कोई